नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, ऑपरेटर हैंडबुक, रेड टीम प्लस, ओसिन प्लस, ब्लू टीम रेफरेंस, जोशुआ पिकोलेट की साइबर सिक्योरिटी संदर्भ पुस्तक है। यह क्रमिक पाठ्य पुस्तक या किसी एक सुरक्षा भूमिका का विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के तकनीकी काम में तुरंत देखने के लिए बनाया गया चीट शीट संग्रह है। पुस्तक का मुख्य विचार यह है कि रेड टीम, ब्लू टीम और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को अलग अलग बंद विशेषज्ञताओं की तरह नहीं देखना चाहिए। आधुनिक डिजिटल वातावरण में आक्रमण की विधि समझने वाले रक्षक, रक्षा नियंत्रणों से परिचित आक्रमण सिमुलेटर और सार्वजनिक स्रोतों से संदर्भ जुटाने वाले विश्लेषक सभी अधिक उपयोगी निर्णय ले सकते हैं। इसमें 100 से अधिक संदर्भ शामिल बताए गए हैं, जिनमें क्लाउड सेवाएं, विंडोज, मैकओएस, लिनक्स, एंड्रॉइड, पोर्ट्स, डिवॉप्स उपकरण, ओसिंट, रक्षक और आक्रमणकारी उपकरण आते हैं। सामग्री को वर्णानुक्रम में रखने का निर्णय इसके व्यावहारिक उद्देश्य को मजबूत करता है। पाठक भूमिका या विभाग के बजाय आवश्यक तकनीक अथवा उपकरण के नाम से जानकारी खोज सकता है। इसीलिए यह पुस्तक ज्ञान की गहराई से अधिक त्वरित पुनर्स्मरण और बहुविषयक कार्यप्रवाह पर केंद्रित है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले ऑपरेटर की अवधारणा, टीम आधारित सीमाओं के विरुद्ध एक व्यावहारिक ढांचा पुस्तक की सबसे विशिष्ट अवधारणा ऑपरेटर है। पिकोलेट के अनुसार रेड टीम, ब्लू टीम और ओसेंट में काम करने वाला व्यक्ति अलग पहचान रख सकता है, लेकिन जटिल सुरक्षा कार्य में उसकी समझ केवल अपनी टीम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह दावा विशेषज्ञता को समाप्त करने का प्रस्ताव नहीं है। इसका व्यावहारिक आशय यह है कि भूमिकाओं के बीच पर्याप्त साझा भाषा और संदर्भ होना चाहिए। उदाहरण के लिए रक्षक को यह जानना उपयोगी है कि आक्रमणकारी किसी सेवा, पहचान या गलत कॉन्फ़िगरेशन को क्यों आकर्षक मान सकता है। उसी तरह रेड टीम सदस्य के लिए यह समझना जरूरी है कि कोई गतिविधि किन लॉगों, अलर्टों या नियंत्रणों से दिखाई दे सकती है। ओसिंट की भूमिका सार्वजनिक डिजिटल स्रोतों में संकेत, पहचान और संबंध तलाशने की है, इसलिए वह तकनीकी जांच को बाहरी संदर्भ दे सकती है। पुस्तक इन संबंधों को एक ही रेफरेंस में रखकर कृत्रिम विभाजन कम करने का प्रयास करती है। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से छोटी सुरक्षा टीमों, सिस्टम प्रशासकों और ऐसे पेशेवरों के लिए उपयोगी है जिन्हें एक से अधिक जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं। फिर भी इसे विशेषज्ञ प्रशिक्षण का विकल्प नहीं समझना चाहिए। साझा समझ बेहतर सहयोग दे सकती है, पर सुरक्षित और अधिकृत परीक्षण के लिए औपचारिक प्रक्रिया, कानूनी सीमाएं और संगठन की अनुमति अलग आवश्यकताएं हैं। दूसरा, एक ही विषय को आक्रमण और रक्षा दोनों दृष्टियों से देखने की उपयोगिता। हैंडबुक का घोषित ढांचा अधिकांश विषयों को दो पूरक प्रश्नों के साथ रखता है। किसी चीज का दुरुपयोग या शोषण कैसे हो सकता है और उससे बचाव कैसे किया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी में यह जोड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुरक्षा नियंत्रण केवल सूची बनाकर नहीं चुने जा सकते। किसी नियंत्रण का मूल्य तब स्पष्ट होता है जब उसके पीछे मौजूद जोखिम, संभावित प्रवेश बिंदु और आक्रमणकारी का उद्देश्य समझ में आए। उदाहरण के लिए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड सेवा या नेटवर्क पोर्ट के संदर्भ में आक्रामक पक्ष संभावित कमजोर सतहों और जांच के तरीकों की ओर ध्यान खींचता है। रक्षात्मक पक्ष कॉन्फ़िगरेशन, दृश्यता, निगरानी और प्रतिक्रिया की जरूरत पर विचार कराता है। दोनों को साथ रखने से पाठक तकनीक को केवल कमांड या टूल के रूप में नहीं, बल्कि जोखिम और प्रतिरोध के संबंध के रूप में देख सकता है। यह सुरक्षा टीमों में अधिक उपयोगी वार्तालाप का आधार बनता है, क्योंकि रेड टीम निष्कर्ष को ब्लू टीम के लिए कार्रवाई योग्य सुधार में बदला जा सकता है। इस पुस्तक का लाभ इसकी संक्षिप्तता है, पर वही इसकी सीमा भी है। चीट शीट किसी तकनीक की परिस्थिति, संस्करण, संगठनात्मक वास्तुकला या कानूनी दायरे का पूरा विकल्प नहीं देती। पाठक को निर्देशों को समझकर नियंत्रित और अधिकृत वातावरण में वर्तमान दस्तावेजों के साथ सत्यापित करना होगा। तीसरा, वर्णानुक्रम व्यवस्था। तेज खोज और संदर्भ पुस्तक की कार्यपद्धति पुस्तक सामग्री को रेड, ब्लू या ओसिन खंडों में बांटने के बजाय वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करती है। यह संपादकीय निर्णय केवल रूप का मामला नहीं है। तकनीकी काम के दौरान उपयोगकर्ता अक्सर समस्या के नाम, टूल या प्लेटफॉर्म को जानता है, पर यह नहीं जानता कि उसे किस विभागीय श्रेणी में रखा जाएगा। यदि किसी को एनमैप, आईप टेबल्स, विंडोज, क्लाउड सेवा या किसी पोर्ट का संक्षिप्त संदर्भ चाहिए, तो वर्णानुक्रम खोज का समय घटा सकता है। इससे पुस्तक का उद्देश्य स्पष्ट होता है, यह पढ़ने के लिए रैखिक कथा नहीं, डेस्क रेफरेंस है। संगठनात्मक दृष्टि से भी यह व्यवस्था संकेत देती है कि किसी तकनीक का अर्थ उपयोगकर्ता की टीम से तय नहीं होता। एक ही टूल जांच, सत्यापन, निगरानी या प्रशिक्षण में अलग अलग प्रयोजन से सामने आ सकता है। फिर भी तेज पहुंच और सीखने की क्रमिक यात्रा अलग बातें हैं। शुरुआती पाठक को विषयों के बीच निर्भरता जैसे नेटवर्किंग की बुनियाद, पहचान प्रबंधन, लॉगिंग या क्लाउड मॉडल स्वयं जोड़नी पड़ सकती है। इसलिए यह हैंडबुक किसी व्यवस्थित पाठ्यक्रम के बाद अथवा उसके समानांतर अधिक प्रभावी हो सकती है। अनुभवी उपयोगकर्ता के लिए इसकी शक्ति परिचित विषय का त्वरित स्मरण है। नए उपयोगकर्ता के लिए इसका अच्छा उपयोग यह होगा कि हर संक्षिप्त संदर्भ को आगे पढ़ने, लैब अभ्यास और संस्थागत नीतियों से जोड़ा जाए। चौथा, प्लेटफॉर्म और उपकरणों की व्यापकता, एकल स्रोत की उपयोगिता और सीमा। ऑपरेटर हैंडबुक का दायरा केवल पारंपरिक नेटवर्क परीक्षण तक सीमित नहीं बताया गया है। इसमें क्लाउड सेवाएं, विंडोज, मैकओएस, लिनक्स, एंड्रॉइड, डिवॉप्स उपकरण, पोर्ट्स, फॉरेंसिक्स, मैलवेयर संसाधन, ओसिंट तथा सहायक उपकरणों के संदर्भ शामिल है। यह व्यापकता वास्तविक कार्यस्थल की उस स्थिति को दर्शाती है जिसमें परिसंपत्तियां कई प्लेटफॉर्मों में फैली होती हैं। किसी घटना की जांच में एंड पॉइंट, क्लाउड पहचान, नेटवर्क सेवा और सार्वजनिक सूचना सभी प्रासंगिक हो सकते हैं। एक जगह विविध विषय मिलने से पाठक को प्रारंभिक दिशा मिलती है और अलग अलग छोटी पुस्तिकाएं ढूंढने की जरूरत कम होती है। मैकओएस और आधुनिक संचालन परिवेश को शामिल करने की मंशा भी इसे पुराने केवल विंडोज या लिनक्स केंद्रित फील्ड मैनुअलों से अलग करती है, लेकिन व्यापक कवरेज का अर्थ प्रत्येक क्षेत्र में समान गहराई नहीं है। क्लाउड सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक्स, मेलवेयर विश्लेषण और मोबाइल सुरक्षा अपने आप में विस्तृत अनुशासन है जिनके लिए अद्यतन विक्रेता दस्तावेज, विशेष प्रयोगशालाएं और गहन प्रशिक्षण चाहिए। अतः पुस्तक को कार्य की शुरुआत में उपयोग होने वाला नेविगेशन उपकरण समझना उचित है। यह पाठक को सही शब्दावली, सामान्य उपकरण और संभावित जांच दिशा दे सकती है, जबकि निर्णायक कॉन्फ़िगरेशन या घटना प्रतिक्रिया के लिए स्थानीय प्रक्रियाएं और प्रमाणित स्रोत आवश्यक रहेंगे। अंत में, ओसिंट को तकनीकी सुरक्षा कार्य प्रवाह में जोड़ने का महत्व, पुस्तक ओसिंट को रेड और ब्लू टीम के साथ रखती है जो इसकी विषयगत पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का अर्थ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से जानकारी एकत्र करना और उसका संदर्भपूर्ण विश्लेषण करना है। सुरक्षा कार्य में इसका उपयोग किसी संगठन की बाहरी डिजिटल उपस्थिति समझने, खुले संकेतों की पहचान करने, संभावित जोखिमों को संदर्भ देने और दुर्भावनापूर्ण गतिविधि से जुड़े सार्वजनिक सुरागों की जांच में हो सकता है। इसे रेड टीम के साथ जोड़ने पर बाहरी हमलावर की सूचना प्राप्ति क्षमता का यथार्थवादी आकलन संभव होता है। ब्लू टीम के साथ जोड़ने पर वही जानकारी सतह घटाने, जोखिम प्राथमिकता तय करने और जांच को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती है। पुस्तक का तर्क यही है कि ओसिंट कोई अलग सजावटी कौशल नहीं बल्कि सुरक्षा कार्य प्रवाह का हिस्सा है। फिर भी सार्वजनिक जानकारी के साथ काम करते समय गुणवत्ता और नैतिकता दोनों जरूरी हैं। खुला स्रोत हमेशा सही, नया या पूरा नहीं होता। नामों, खातों और डिजिटल पहचान के बीच संबंध स्थापित करने में गलत निष्कर्ष का जोखिम रहता है, इसलिए स्रोतों का पारस्परिक सत्यापन, प्रमाण का सावधान रिकॉर्ड और गोपनीयता तथा कानून का सम्मान अनिवार्य है। हैंडबुक की संक्षिप्त रेफरेंस शैली ओसिंट टूल और तकनीकों की दिशा दिखा सकती है, लेकिन विश्वसनीय विश्लेषण के लिए आलोचनात्मक सोच और स्पष्ट जांच सीमाएं आवश्यक हैं। निष्कर्ष में, ऑपरेटर हैंडबुक उन साइबर सिक्योरिटी पेशेवरों के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें किसी कार्य के बीच संक्षिप्त, विविध और जल्दी खोजे जा सकने वाले संदर्भ की जरूरत होती है। सिस्टम प्रशासक, सुरक्षा संचालन केंद्र के विश्लेषक, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के विद्यार्थी, रेड टीम और ब्लू टीम सदस्य तथा ओसिंट में रुचि रखने वाले पाठक इससे उपयोगी प्रारंभिक संकेत पा सकते हैं। विशेष रूप से यह उन लोगों के लिए व्यावहारिक है जिनकी भूमिका सख्ती से एक विभाग तक सीमित नहीं है। वे किसी प्लेटफॉर्म, पोर्ट, सहायक टूल या सुरक्षा अवधारणा का त्वरित स्मरण कर सकते हैं और आगे की जांच के लिए दिशा बना सकते हैं। अनुभवी पाठक इसे डेस्क पर रखे संदर्भ की तरह उपयोग कर सकते हैं, जबकि नए पाठक इसे बुनियादी पाठ्यक्रम, सुरक्षित लैब अभ्यास और आधिकारिक दस्तावेजों के पूरक के रूप में ले। समान श्रेणी की कई पुस्तकों में या तो रेड टीम, तकनीक या रक्षा संचालन या केवल ओसिंट पर अलग जोर होता है। इस पुस्तक की अलग पहचान इन तीनों को एक ऑपरेटर केंद्रित ढांचे में जोड़ना है। वर्णानुक्रम व्यवस्था भी इस विचार को व्यवहार में उतारती है, क्योंकि जानकारी को टीम के लेबल की बजाय जरूरत के अनुसार पाया जाता है। इसकी सीमा भी इसी प्रारूप में है। यह गहन विशेषज्ञता, नवीनतम टूल स्थिति या पूर्ण कार्यविधि का विकल्प नहीं है। फिर भी व्यापक विषय सूची, आक्रमण और बचाव के समानांतर दृष्टिकोण तथा टीमों के बीच साझा समझ पर जोर इसे सामान्य चीट शीट संकलन से अधिक उपयोगी बनाता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जॉशुआ पिकोलेट, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।